कितने बड़े सौभाग्यवान हैं जो भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, पालन पोषण किया, सिखलाया, सब कुछ। बड़े हुए अर्जुन ने इनको धनुर्विद्या शिक्षा दी, भगवान के भक्त ने, कृष्ण ने शिक्षा दी, भागवतों पालन पोषण मिला। बड़े हुए पृथ्वी का राज्य उन्होंने लिया और कृष्ण विजय के लिए निकले और एक ऋषि के आश्रम में गए। प्यास लगी, ऋषि ने पानी नहीं दिया, ध्यान में मग्न है भगवान के, उन्होंने उनको पुरस्कार दे दिया, सांप मरा हुआ उनके गले में लगा दी, गले में उन्होंने सांप लगा दिया। और उसके लड़के ने, ऋषि के लड़के ने अभिसंपात कर दिया, ये सातवें दिन तुम्हें सांप काटेगा, सब दर्शन करेगा तो मारा जाएगा। ऋषि को जब होश में आए, पता लगा, तो अपने बच्चे पर बिगड़े, तो ब्राह्मण का बेटा नहीं, मालूम है तो क्षत्रिय का बेटा है, ब्रह्मर्षियों को तो ऐसा साप नहीं देना चाहिए, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, महाराज परीक्षित धार्मिक आदमी है और तुमने अब चंपा ऐसा कर दिया। खैर, आपने दो ब्रह्मचारियों को भेज दिया, जाकर के राजा को कहा हो जैसे सातवें दिन उसको सांप काटेगा, मरेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता, जो कुछ करना है कर ले। रास्ते में चिंतित हुए जा रहे थे, परीक्षित महाराज, मैंने ये अन्याय किया, यदि सचमुच में वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं वो ऋषि, और मैंने उस अवस्था में पानी मांगा नहीं दिया, तो वो तो भगवत चिंतन में थे और हमने उनके गले में सांप लगाए, बहुत अन्याय, कहीं हमारा सर्वनाश नहीं हो जाए। इतने में वो दोनों आदमी पहुंचे, लड़के बोले कि आपको ऋषि के लड़के ने सांप दिया, ये सातवें दिन आप मरेंगे, कोई नहीं बचा सकता, जो कुछ करना है कर। बड़े प्रसन्न हुए, ये सांप नहीं बर है मेरे लिए, क्यों, मैं सोचता था कि आज घर छोड़ करके कल से भजन करूंगा, संसारिक आसक्ति छोड़ दूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, कल करूंगा, कल करते 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 मेरे बहुत समय बीत गया, नहीं कर पा रहा। तो वह तो बिना बस ये चेष्टा के ही ये बर मिल गया कि आज से मैं सातवें दिन सांप काटेगा, अब राज्य से मुझे मतलब क्या, स्त्री पुत्र से परिचय क्या प्रयोजन, बस घर नहीं गए, राजतिलक वहीं पर फेंक दिया, मुकुट धनुष बाण वहीं पर छोड़ दिए, राजकीय वस्त्र छोड़ दिए, साधारण कपड़े लेकर के और गंगा के किनारे बैठ गए। और कितने मैंने जाने कैसे 60,000 या कितने 88,000 ऋषि, कैसे कैसे नारद, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, पुला, जो कि नवजीवन का संचार कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, विश्व की सृष्टि भी कर सकते हैं, विश्वामित्र ने कुछ किया था ना, नहीं किया, ऐसे ऐसे ऋषि, और उस अभिसंपात को जो श्राप था उसको भी बदल देने वाले ऐसे ऐसे ऋषि। मैंने कहा जैसे ये श्राप कहाँ, ये तो इतने ऋषि लोग आ गए, ये तो सचमुच में बर है। और सातवें दिन तक उन्होंने भागवत को श्रवण किया, आप लोग सब जानते हैं, और आत्मा विशुद्ध होकर के कृष्ण के ब्रजधाम में गोपी के रूप में गई है। अब ये अभिसंपात जो था, ये सातवें दिन सांप काटेगा, ये बर है कि श्राप है, क्या है, हैं? आप लोग विचार करो, है ना? ऐसा यदि हमारी मृत्यु आए या 88,000 ऋषि लोग आ जाएं, जो कृष्ण को जो चाहे करा दें, मृत्यु को भी बदल दें और परम धाम को मिल जाए, प्राप्ति कृष्ण की सेवा मिल जाए, ये तो परम सौभाग्य की बात है। ये व्यवस्था किसने की, उनके जो भीतर में जो गुरु हैं उन्होंने ये किया। ये गुरु कौन है? किसी पुच्छ मौली कृष्ण स्वयं है, ये गुरु की कृपा है। स्वामी जी हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज बनिए के लड़के थे, सब भ्रांत शिक्षित परिवार था, धार्मिक परिवार था। जन्म हुआ भी जन्माष्टमी के दूसरे दिन नम दोस्तों के दिन, नाम भी क्या रखा? अभय चरण। अभय है कौन? अभय चरण कृष्ण है। और बचपन में ठाकुर जी की मूर्ति के साथ में खेलते, उनसे खेलते थे। आजकल बंदूक लेते हैं, क्या क्या करते हैं, पॉपेट से नाना प्रकार। बड़े हुए, अच्छी शिक्षा हुई, अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा हुई, और शिक्षा होते ही उनके पिताजी के बंधु ने अपने बंगाल कॉल केमिकल में मैनेजर का पद माने सब कुछ उनको बना दिया। अब देखो भगवान की अभी तक कृपा नहीं थी उसने, अब कृपा आरंभ हुई। क्या मैनेजर जी से उनको रिजाइन देना पड़ा, बाध्य हो करके निकाल दिए गए, निकाल नहीं दिए गए, छोड़ना पड़ा। उसके बाद अपना उन्होंने किया बिजनेस मेडिकल का, कोई कंपनी वहां पर दवाएं तैयारी करते थे जैसे बंगाल के
फार्मा।
और एक वर्ष जाते जाते वो पूरा फेल हो गया, लाखों रुपए डूब गए, हताश हो गए। उनके घर वालों ने कहा ये कुपुत जन्मा, ये सारा रुपया बर्बाद कर दिया। घर वाले बड़े नाराज हुए, पत्नी नाराज हुई, लड़के नाराज हुए, भाई लोग नाराज हुए। इसके बाद उन्होंने कहा जैसे ठीक है देखे मेडिकल दुकान की, और एक वर्ष तक चलने के बाद में वो भी खत्म। एक पैसे की आमदनी नहीं रही, कुछ अपनी दवाएं बना करके दाद और खुजली और क्या क्या खुद जाते दुकानों में बेचते, वो भी खत्म। और ऐसी स्थिति में बिना पैसे के हमारे यहाँ है। कहा जी आप इतने योग्य, मेडिकल दुकान करने के लिए भगवान ने आपको नहीं भेजा, गुरु जी के ये कृपा है आप पर, समझिए। अभी संन्यास लेकर के प्रचार कीजिए, देखिए आपके दो लड़के हैं वो भी आपको गले में धक्का देकर के बाहर कर रहे हैं, आपको लाखों करोड़ों बच्चे मिल जाएंगे। और हुआ क्या देखिए, अब उनका जो दुकानकार नहीं चलना है ये किसने व्यवस्था की? ये गुरु कृपा है। और उनको कहां से कहां उठा करके लेकर के पहुंचा दिया। आदमी पहले नहीं समझता है। मीरा जब तक घर में थी, घर में सभी उसके विरोधी थे, उसका पति विरोधी, उसकी सास विरोधी, ननद विरोधी, घर वाले विरोधी, राज्य के सभी लोग विरोधी, भजन नहीं कर पाती। वीणा की तान पर जब तान गाती तो कृष्ण आकर के स्वयं नाचने लगते, बंसी बजाते एकदम ऐसा। और राणा उनको जरा ये किसके साथ में नाच गान रही है, मेरी पत्नी देखो तो कैसी ये निर्लज्ज बेहाया हो गई जो दूसरों के साथ में नृत्य करती है और गाती है। इल्जाम लगाए उसको मारने के लिए बीज दिया, क्या क्या आप लोग जानते हैं। ये भगवान की कृपा है, ऐसा नहीं कराते तो घर से निकलती और मीरा कोई जानता। इसलिए दुखों से मत डरना, एक पैर इसके लिए तैयार रखना, ये गुरु की कृपा है। संसार का बंधन सहज ही नहीं दूर होता, गुरु ऐसी व्यवस्था करते हैं विपत्तियों के बीच में डाल देंगे, और डाल करके संसार के प्रति आसक्ति को दूर कर देंगे और उन लोगों का भी मोह उससे हटा देंगे। और फिर सोना तपता हुआ सोना बनाकर सूर्य की समान उसको चमका देंगे, ये गुरु जी की कृपा। और ब्रज में लेकर के जो कोटि जन्म में यह संभव पर नहीं होता, कृष्ण के चरणों में चला देंगे। यहाँ अनंत आनंद का समुद्र लहरा रहा है, वहां पर प्रेम की वो चलती है, लहरें चलती है, वहां पर दुख की छाया और नाम तक नहीं। वहां विरह भी है तो वो विरह भी आनंद का एक एक लहर है, वो वहां दुख नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम में तड़फड़ाती है गोपिया, तड़फड़ाती है नंद बाबा, रोते हैं यशोदा जी, रोती है। उस रोने में भी कितना आनंद है आप लोग समझेंगे नहीं। अभी कृष्ण का कोई कृष्ण की ऐसी लीला सब कहूं गोपियों की, ये सभी लोग रोने लगे। उस रोने में आनंद है कि नहीं महाराज जी? वही कथा जरा बोलिए तो। सीता जी पाताल में प्रवेश कर रही है, वहां पर लव कुश आया, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा सुंदर कीर्तन किया। रामचंद्र का वनवास इत्यादि सभी श्रोता रो रहे हैं। कथा समाप्त हुई, राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जी देखो हमारा रूप और इसका रूप मिलता है, ये शायद हमारा वही लड़का तो नहीं? सीता जी गर्भवती थी जब घर से छोड़ा निकाला, हो सकता है कि वही मेरे लड़के। पूछो तो जी इसके बाप का नाम क्या है और इसको उपहार दो, सोने की थाल में मणियां सरसियां भर दो और इसको दो, और रेशमी वस्त्र इत्यादि दिए जाए इसको। लक्ष्मण जी ने पूछा जाकर, बेटे ये तो बतला, ये तो बहुत अच्छा संगीत गाया, सब लोग एकदम कमाल कर रहे, सब लोग रो रहे हैं, किंतु लोग कुछ शंका कर रहे हैं, तुम किसके बेटे हैं, तुम्हारा बाप और मैया का नाम क्या? तो उसने निर्धारक होकर के उत्तर दिया, जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, ब्रह्मचारियों के पिता माता का परिचय नहीं पूछते, उनका गुरु का परिचय पूछते। हमारा गुरु का परिचय है, माता पिता का कोई परिचय नहीं हमारा। आप तो बड़े बुद्धिमान विद्वान और राजा के भाई हैं, आपको तो ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। किसी ब्रह्मचारी से मत पूछो कि तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा बाप क्या नाम क्या है, तुम कहाँ तक पढ़ा था, ये मत पूछो। उसके भगवत प्रेम को देखो, उसके गुरु का परिचय पूछो, उनका गुरु की परंपरा होती है। वो लज्जित हो गए और रुपये जो दिए, हमें इसे क्या दें? गुरु जी के आश्रम में केले हैं, आम अमरूद लगे हुए हैं, उसे हमारा पेट भर जाता है, थाली की जरूरत नहीं है, सोने की थाल में क्या करूंगा, हाथ में लेकर के खा लेते हैं। और गंगा जी से वहीं पर गोमती नदी में हम पानी पी लेते हैं, सब कुछ हमारे आश्रम में है, मुझे कोई चीज की जरूरत, ये आप लोग राजा और क्षत्रिय हैं, आप लोगों की जरूरत है। आप लोग अभिभूत हो गए। जब लौटे घर में तो क्या हुआ, भैया ने पूछा, बेटा तुमने इतना देरी क्यों कर दिया? अरे क्या कहूँ भैया, आज देरी हो गई, एक राम 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 रा, नाम का एक राजा आया है, वो यज्ञ कर रहा है, हमारे गुरु जी का ये आदेश था कि ये उनको ये वाल्मीकि रामायण उनको सुनाओ, तो मैं सुना रहा था। सभी लोग बड़े रो रहे थे, भैया वहाँ पर इसलिए देरी हो गया, मैंने एक मूर्ति देखी सोने की, ठीक तुम्हारी जैसी, तुम बोल रही हो वो बोलती नहीं थी, बस उसने हमें गोदी में नहीं उठाया, केवल हमारे तरफ में देख रही थी, और तुम हमें गोदी में उठा करके बातचीत कर रही। मैं नहीं समझा ये कौन है। ये सुनते ही सीता जी आके सब रोने लगी, एकदम रोने लगी। तो लवकुश ने अपने चादर से उनके, भैया तुम क्यों रो रही? और सीता जी क्या बतलाएंगे, उसी पति ने हमारे निष्ठुर ने हमको वनवास दे दिया है जीवन भर के लिए। दूसरे दिन रामचंद्र जी ने वाल्मीकि को बुलाया, कहा कि तुम्हारे आश्रम में मेरी सीता है, मालूम होता है, उसे बुला लाओ, और मैं और सीता से कहो ये प्रस्तुत रहेगी, ये सभा को बतलाना है जो तुम पतिव्रता। बाद में कहा, जो अच्छी बात है मैं कल लाऊंगा। सीता जी को उन्होंने कहा कि पुत्री राम के यहाँ चलना चलेगी, आप मेरे पिता आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही करूंगा। तो हमारे समझ से तो तुम्हारा चलना उचित है, चलिए। दोनों बेटे को अपने हाथ पकड़ करके उंगली वहां पर पहुंची, सारी सभा 88,000 ऋषि और कितने कितने सब लोग, यशोदा मैया कैकई, सुमित्रा, हनुमान और सारे जितने उनके परिकर वहां पर उपस्थित है, और एक तक होकर के चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंट और सब देख रहे हैं। बहुत दिनों के बाद में उनको देखा बच्चों के साथ। जब निकट में पहुंची तो राम ने कहा, तुम्हारा अभिनंदन है किंतु मैं चाहता हूं तुम पतिव्रता हो, तुम मुझे छोड़कर तो किसी को नहीं जानती, किंतु मैं ये चाहता हूं कि इस सभा में तुम एक बार और ये ऐसा तुम करो जिसे लोग समझे कि हाँ तुम पतिव्रता हो। तो तुम ऐसा कोई प्रमाण दो सबके सामने। पिताजी अभी भी प्रमाण की जरूरत है, तो ठीक है मैं प्रमाण दे दिया। प्रमाण दिया क्या? जैसे अच्छा मैं तन से, मन से, वचन से यदि मैंने कभी भी किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया है तो हे धारित्री देवी तुम मेरी मैया है पृथ्वी, और तुम अभी फट जाओ और अपनी गोद में हमें ले। तीन बार ऐसा कहा और साथ ही साथ में पृथ्वी फट गई, सोने के सिंहासन पर पृथ्वी देवी आई और जब सीता जी को अपने अंक में ले ली और झट नीचे चली गई और पृथ्वी अब तो हाहाकार मच गया, राम भी रोने लगे, सारी सभा रोने लगी। यह कितनी दिरा की बात है, इससे बिरा क्या हो सकता। राम एकदम रोने लगे, हाहाकार कर उठे, धनुष मार दिया, बजे तू मेरी सास है पृथ्वी, अभी यदि सीता को नहीं लौटाएगी तो तुम्हें मैं बाणों से विदीर्ण कर दूंगा और सीता को वहां से ले आऊंगा। वाल्मीकि जी ने कहा जी शांत होइए, शांत होइए, ये लीला होनी है आपके लिए, सीता जी वहां पर प्रतीक्षा कर रही हैं, आप वहां चलिए, अब कुछ मत कीजिए। ये विरह की कथा है ना, इस विरह में सुनने में कितना आनंद है। गोपियों का विरह ऐसे आनंदमय है, जो समझेगा वो समझेगा। विरह में अधिक मिलन होता है क्योंकि उसकी दिन रात चिंतन होती है। भक्त भजन करते समय वह विरह में उन्मत्त रहता, हा कृष्ण तुम कहां, महाप्रभु को देखा ना, कोथा है कृष्ण, कोथा है कृष्ण, हमारा हृदय फट रहा है आपके लिए, जल्दी से दर्शन दो, मैं तो अब भी मरा और मूर्छित हो जाते थे। उस समय में मूर्छित मैंने क्या, उनका चित्त मन सब कुछ कृष्ण के अंतर में और एकदम संग, ऊपर से देखते हैं कि सेंसलेस हो गए और भीतर में आत्मा क्रिया कर रही है और कृष्ण से मिल रही है, वहां उनकी लीलाओं का स्मरण हो रहा है, ये इसका नाम है भजन। संसार है अपने स्थिति पर, आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ ही यहां घूम रहा, मैं रहता कहां हूं कौन जानेगा, ये बट छोड़कर के मैं ही नहीं जाता तो राधा कृष्ण क्या बदल से जाएंगे। इन चीजों को इसलिए गुरु क्या करता है, ये चीजें साधक के हृदय में भर देता है, ये गुरु की महान कृपा है। ऊपर से लगता है कि अरे ये बड़ा दुखी है, ये तो पागल हो गया, घर वालों को देखता नहीं, स्त्री से मोह नहीं है, पति से इसको मोह नहीं है, बच्चों पर स्नेह नहीं है, है जरूरत क्या इसकी, जब तक मोह है तब तक है, और जब राधा कृष्ण के चरणों में चित्त चला गया तो इसकी क्या जरूरत है। इसी तो कहते हैं संसार से बंधन मुक्त हो जाना, इस गुरु कृपा को कौन समझेगा, बहुत कम है, बहुत कम। मथुरा में एक बार एक लड़का बीमार पड़ा, 10 वर्ष का लड़का, बड़ा सुंदर सुकांत, बहुत बुद्धिमान, अब वो अस्पताल में भर्ती हुआ, 8-10 डॉक्टर देख रहे हैं, अब मरा तब मरा। मैं गया देखने के लिए, छटपट छटपट कहा मैया और बाप बेहोश पड़े रहे, बहुत समझाने की चेष्टा की नहीं समझा। उस समय मैंने कहा कि तुमको कृष्ण भक्ति चाहिए कि बेटा तुम्हारा बच जाए, क्या चाहिए, हमको कृष्ण भक्ति नहीं चाहिए, हमारा बेटा बच जाए, बतलाओ। उसमें कृष्ण आकर के कहते कि इसको मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ में बैकुंठ में, वृंदावन में ले जा रहा हूँ, तो उसकी मैया क्या कहती, जरूरत नहीं हमको वृंदावन की, नहीं समझते हैं हम, तरह अभी तुरंत हमारा बेटा चला जाए। इसलिए भगवान की कृपा, गुरु की कृपा समझना बड़ा भारी कठिन है। आप लोग इस चीजों को समझिए और भगवान का भजन कीजिए, अपना कर्तव्य पालन कीजिए जो भगवान ने दिया है। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है कि आज ही कृष्ण को मिल जाए, ये नहीं। पहले यह संसार एक शिक्षागार है, इसमें रह करके पुष्ट हुई शिक्षा लीजिए। अभी स्त्री के प्रति जो स्नेह है, पति के प्रति जो स्नेह है, कृष्ण पर धीरे धीरे ले आइए और अपना कर्तव्य कीजिए और इसी में शिक्षा कीजिए। आज छोड़ देंगे बस सब गड़बड़ हो जाएगी, उधर के न रहे न उधर करें, घर का ना घाट का, ऐसा ना हो। खूब इसमें परिपक्व हो जाएं, संसार बुरा नहीं है, इसका व्यवहार और सदव्यवहार बुरा और अच्छा है, इसलिए इसमें शिक्षागार समझ समझ करके अपना अपना कर्तव्य पालन कीजिए और आगे बढ़िए। इसका दुरुपयोग मत, ये धन है अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए भजन की तरफ अग्रसर कीजिए, इसका सदुपयोग हो। मोह में अंधे न मत, इस तरह से आप लोग चलिए और सुखी रहिए। कीर्तन सुनाओ, पुस्तक देकर के हम नहीं कीर्तन करने देंगे, याद करके आगे से करना, अब बड़े भाव से करना है, ये सबके आंखों में आंसू आ जाए। अभी तैयार रहे, हारमोनियम बजाएगी ऐसा कीर्तन करना ब्रज का, राधा जी संबंधी या कृष्ण
संबंधी।
वो उनके उनके चरण में जाएगी तो इतना बिरह भागे तो दिन रात तड़पती रहेगी। देखो कृष्ण चले गए हैं मथुरा, माता पिता के तो आंखों में आंसू भी सूखे हैं, अंधे हो गए हैं, लकड़ी हो गए हैं। ब्रज की गायें भी धीरे 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 कृष्ण के विरह में छटपट कर रही हैं। बछड़े दूध नहीं पीते, अब कोयल नहीं कुहकती है वृंदावन में, मोर अब वृंदावन में नाचना बंद कर दिया, किसके लिए नाचे। ब्रज का सारा सुखी समाप्त हो गया विरह में, गोपियों की क्या दशा थी। राधा जी फूलों की सेज पर सुलाई गई हैं, प्राण है कि नहीं है, ऐसी उनकी स्थिति, बच रही हैं कि नहीं बच रही हैं, कोई भी कभी होश में आती हैं कभी बेहोश रहती। कहते कि एक मेरी साथी थी जो मुझे बड़ी प्रिय थी, वो थी नींद। वो निध भी जब कृष्ण गए तो अपने साथ में निध को, मेरी सखी को ले गए, अब निध भी नहीं आती, दिन रात विरह में तड़प रही हैं, आज कितने वर्ष हो गए। और एक काले भौंरे को देखा राधा जी के चरण कमल को कमल समझ करके, गुंजार करता हुआ मानो कमल में मधु पिएगा। और राधा जी उठ करके खिलखिला करके हंसने लगी, अरे तू मधुपान करके शराब पी करके आया है, काला जितने काले हैं उन पर विश्वास नहीं करती। बातचीत करने लगी, हंसने लगी, और कभी उस पर बिगड़ रही हैं, कभी झुझुला रही हैं, कभी तो हट यहां से हट, अपवित्र अपने गुल्फों में, कहां से ये गुलाल रंग कहां से ले आया, तू हट पागल, अपवित्र तू है, कहां से लाया, मैं जानती हूं ये कहां से लाया, ओ कृष्ण मथुरा है ना, काला मथुरा, कृष्ण ने नाम लिया, काला एक मथुरा है, वो मधु का मालिक है, मधु माने शराब, होलसेल डीलर है वो, और उसका तो दूत है, मधुपान करके तुम यहां आया है और हमारे चरण कमलों को छूना चाहता है, मनाने के लिए आया, तो ये मनाने का तरीका नहीं। एक काला था पहले, उसका नाम राम था, और वो घर से निकला, अपनी स्त्री को लिया वन में जा रहा है, वनवास का वेश लिया, किंतु धनुष बाण साथ लिया और अपनी प्यारी स्त्री को भी साथ में ले लिया। वन में जाने का ये तरीका है। और वहां जाकर के उसके रूप को देख करके एक बड़ी सुंदरी नारी शूर्पणखा बड़ी सुंदर रूप बना करके उसने बोली, जैसे मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दिया, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम हमसे शादी कर लो। इसमें कुब्जा उसका क्या दोष है शूर्पणखा का? तुम्हारे रूप का दोष है, उसका दोष नहीं। स्त्रियां तो बड़ी सरल सहज होती हैं, तुम्हारे रूप को देख करके तुम्हारे ऊपर विश्वास करके अपना हृदय तुमको दे दिया, उसको तुम्हारा नाक कान काटने की क्या जरूरत थी? बतलाओ तो। एक काला वो था, उसने सर्वस्व देना चाहा, उसने नाक कान काट लिया, एक निष्ठुर। और बंदर का मांस नहीं खाया जाता, उसका शिकार नहीं किया जाता है, निष्ठुर क्षत्रिय भी नहीं करते, हत्यारे लोग भी नहीं करते। और वो काला किया क्या? मैं स्त्री जीत हूं, मैं स्त्री का जीत, मैं वन में आया हूं और एक स्त्री के वशीभूत होकर के उसने कहा जरा इस हिरण को मार लाओ। उसका बुद्धि विवेक नहीं था काले का, और हिरण के पीछे दौड़ा। उसके भैया ने समझाया ये हिरण नहीं है, ये तो माया मृग है। माना नहीं, स्त्री के बाद वशीभूत होकर के गया। अंत में क्या हुआ? स्त्री को दूसरा कोई हरण करके ले गया और उसके पीछे पीछे रोता हुआ पागल होगा, इतना धैर्य नहीं। बहुत सी स्त्रियां तो इंग्लैंड में तो और अमेरिका में 10 बार चेंज करती हैं एक दिन में, 5 पति। तो इसे क्या हो गया? उसको इतना धैर्य नहीं, उसके लिए रो रहा है, तड़प रहा है वो काला। और एक काला और था, 52 अंगुल का। अच्छा, उसने बंदर को मारा, किस लिए मारा? दो थे स्त्रियों के प्रति कामी, एक सुग्रीव था बंदर, बंदर ही बंदर था वो। उसने कहा कि देखो तुम्हारी स्त्री को मैं पता लगा करके ले आकर के तुमको दे दूंगा। तो उसने कहा कि हम भी तुम्हारे शत्रु को मार करके तुम्हारी स्त्री को ला देंगे। दोनों स्त्री ऐसे ही काम, दोनों काले। और उसने उस बंदर को बिना कारण मार दिया। बतलाओ तो, ऐसा काला, जल्दी यहां से हटो, उस काले से हमारा कोई संबंध नहीं। एक काला और था, किसी एक राजा के पास में गया, बलि महाराज के, उसने राजपाट मांगा। उसने कहा कि 3 पैग हमको जमीन दे दो। तो खिलखिला करके हंसने लगा कि 3 पैग क्या करेंगे, कोई स्त्री ले लो, हमारा राज्य ले लो, तुम्हारी शादी करा देंगे, राज्य और पाट दे देंगे, ये 3 हाथ जमीन लेकर के क्या करें? उसने कहा कि अरे मैं ब्राह्मण का लड़का, ब्रह्मचारी हूं, मैं थोड़े में ही संतुष्ट हूं, हम उसको अधिक नहीं चाहिए, हमको 3 ही हाथ दे। अच्छा चलो, किंतु जब मापने लगा तो क्या किया, इतना कपटी धूर्त, एक पैर से ही सारी पृथ्वी को मांग लिया, माप लिया, और दूसरे पैर से क्या किया, एकदम ब्रह्मलोक से भूख हुआ स्वाहा महाजाना तपा सत्य तल तलातल पाताल रासातल 14 लोग मान, तीसरे के लिए जगह दो, नहीं तो अभी तुमको सर्वनाश करते हैं। अरे भाई तुम जितना छोटा था उसी से माप लो, इतना बड़ा क्यों किया, ये धूप नहीं है। तो ये काले ऐसे ही होते हैं। और अंत में ले करके उन्होंने कहा जी हमको माप लीजिए, मैंने अपने को भी समर्पण कर दिया। और वो काला ऐसा धूप जो इसको बांध करके नाक फांस में बांध करके वो तो ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी आकर के छुड़वा दिया। तो ऐसे धूपों से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, जाओ हमारा पैर मत छू। देखो तो इतने विरह में तड़प रही हैं और झुंझुला रही हैं, क्रोधित हो रही हैं। फिर अरे तुम वहां से आया है, मथुरा से तुमको भेजा है हमारे लिए, अच्छा बतलाओ मैं क्या करूं? ओ तुम ये चाहता है हमारे साथ में तुम मथुरा चलो और वहीं पर आना, ये कैसे हो सकता है? हमारी वहां पर कितनी शौतें हो जाएंगी, उनके साथ में मैं कैसे रह सकती, मैं वृंदावन छोड़कर के नहीं जाऊंगी, वो कहाँ है भला, कभी हमारी चिंता करते हैं, ये कहते 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 पीछे वो राधा जी बिरहणी, वो हमारा विरह का ताप कैसे हरेगी, वो तो और दे देंगी। किंतु यही उनकी कृपा होगी। यदि इतना विरह आए, यह है तो आप लोगों के हृदय में भी ऐसा विरह आए कृष्ण के लिए, राधा जी के लिए विरह आए, उनकी सेवा को करें, यह है भजन का तरीका। आप एक सुनाइए तो बहुत सुंदर। आप हारमोनियम बजाइए, ये भी हारमोनियम भी हारमोनियम लेकर सुनो। कितना सुंदर ये कीर्तन है ना, किंतु जो गाया होगा वो कैसा होगा, उसके सिर के बाल उलझ रहे होंगे, कपड़े सन से फिसल गए होंगे, बावरी हो गई होगी, शोक लज्जा सब जलांजलि दे दी होगी, घर से संपूर्ण रूप से नाता तोड़ दी होगी, कौन बीमार है, क्या घर में प्रॉब्लम है, बच्ची की अभी परीक्षा होने वाली है, पास होगी कि क्या होगी, ये सब चिंता उसको होगी कि नहीं, कोई भी संकार का संसार का कोई भी प्रॉब्लम छू जाएगा उसे, वो तो दीवानी हो गई है मत सुन। वैसा भाव हमको कब आए ये कीर्तन करके यदि हो तब तो कुछ हुआ, नहीं तो गाना गाया अच्छा सुरीला कंठ से गाया और फिर एक मिनट में घर के कामों में लग गए, तो फिर क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दादाजी के चरणों में सचमुच में ऐसे भाव हो जाए, बावरी हो जाए, बावरा हो जाए, पागल हो जाए, इसके लिए साधन करना होगा, ये सहज नहीं होगा, बहुत साधन, कहां से आरंभ होगा, पहला साधु संग, साधु संघ में कृष्ण की महिमा राधा जी की महिमा समझेंगे, ये क्या चीज है, प्रेम क्या चीज है, ढाई अक्षर प्रेम का बड़ा सुपंडित हो, बड़ा मुश्किल है, अभी सुन रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा कोई कष्ट आया ना तो बिल बिलाने लगे, सांप देकर के डर गए, कोई थोड़ा सा कष्ट हुआ, जुखाम सर्दी है उसी में हम हड़बड़ा गए, संसार के सारे प्रॉब्लम घेर रखे हैं, ये कीर्तन करने से नहीं होता है, कीर्तन का भाव हृदय में कैसे आए, साधु संग, पहले साधु संग में भजन करने की निष्ठा उत्पन्न हो, प्राण जाए तो किंतु भजन नहीं जाए, घर वाले छोड़ दें, पति छोड़ दे, जैसे मीराबाई का बच्चे ले छोड़ दें, भीख दर दर में मांगना पड़े, भीख भी न मिले कोई भी बात नहीं, संसार ठुकरा दे, और जब कृष्ण मिलना पड़ा तो ऐसा ही होगा, संसार ठुकरा देगा, समझे ये पागल पागली है, थोड़ी सी आंच लगी तो बिल बिल आने लग जाएंगे, किंतु जिसको ऐसा प्रेम होगा वो बिल बिल आएगा, उसको तो तन का होश नहीं, तो पहले साधु संग, तब भजन की क्रियाएं आरंभ होगी, गुरु पदाश्रय होगा, वैसा गुरु उसको नहीं मिलेगा जो दो दिन के बाद में गिर जाता है, पहला गुरु किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तीनों गिर गए, अब गुरु पर विश्वास ही नहीं रहा, किंतु जिसको ऐसे प्रेम और लगन है, साधु संग पहले सुनेगा कृष्ण प्रेम क्या है, सारा संसार का वैभव एक तरफ और प्रेम का तनिक भी अंश है वो एक तरफ, तो भी जगत का वैभव उस प्रेम का मूल्य नहीं चुका सकता, नहीं तो साधु संत लोग संसार को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, आप लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे, छोड़ेंगे भी तो अभी एक डाली पकड़ी नहीं छोड़ेंगे, गिर जाएंगे, सुखदेव गोस्वामी चाहते तो क्या नहीं कर लेते, नंगे क्यों घूम रहे, इसलिए प्रेम के तरंग में डूब रहे हैं, उनको होश नहीं है इस अर्थ और ऐसा वो सुख है, साधु संग भजन क्रिया होगी, गुरु इत्यादि शुद्ध गुरु मिलेंगे, ऐसे गुरु मिलेंगे जगत से एकदम निष्क्रिय, जगत में कोई भी पैसा नहीं चाहेंगे, ओ देखो तुम घर में घर वाली को पैसा मत देना, हमको देना, घर वाली से बातचीत नहीं करना,
और कौन कौन गुरु कह रहे हैं जो दूसरे की स्त्री से साधु से इधर में सन्यासी और दूसरों की स्त्रियों से प्रेम है और उसको कह रहे हैं तुम अपनी स्त्री से बातचीत मत कर उसको पैसा पैसा देना हमको तो ऐसे तो गुरु गिरे हुए गिरेंगे क्या भगवान न करे ऐसे गुरु से कोई संपर्क शुद्ध गुरु वैष्णव उनको संसार से विरक्ति हो हमारी समस्त शंकाओं को दूर कर सके दुख में उनकी वाणी हमारे लिए सहारा हो संसार के दुख को दुख मत समझो वरदान समझो मैं तो भगवत भजन में रुचि नहीं आएगी उसे डरो मत चैतन्य महाप्रभु को देखो तो युवा अवस्था में कितने सुंदर घूफराले बाल बड़ी बड़ी आंखें कितना सुंदर राधा जी का रूप लेकर के आए छोड़ दिया ना विष्णु प्रिया जैसी सुंदरी बूढ़ी मैया को छोड़ दिया क्या खाएंगे ये भी नहीं देखा रघुनाथ दास को देखो ऐश्वर्य राज्य सब अपनी पत्नी को छोड़ करके कहां बिना खाए 7 दिन तक चलते रहे महाप्रभु के चरणों में खाते क्या थे गायें जगन्नाथ जी का प्रसाद जूठा छोड़ देती पच जाता सड़ जाता उसको पानी से धो करके नमक मिला करके खाता किसी का मांगने नहीं जाता राजा के लड़के होकर तब तुमको ऐसा प्रेम हुआ तो साधु संग हरि भजन हो सद्गुरु का पदाश्रय हो निरंतर हरि कथा सुने निरंतर कृष्ण नाम करें घर का काम कर्तव्य के लिए करेंगे जब परिपक्व हो जाएगा अपने आप सब कुछ छूट जाएगा छोड़ने की चेष्टा मत करो महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास हमने भी संसार नहीं छोड़ा संसार छूट गया मैं तो उस समय जिस समय छोड़ा उस समय पागल हो गया था उस समय मुझे किसी की घर की बार की किसी की चिंता अब तो चिंता होती है कि हमारे लिए बड़े दुखी थे उस समय मुझको कोई कल्पना नहीं होती थी बस कैसे कृष्ण मिले कैसे कृष्ण मिले पागल एकदम तो ऐसे हरि कथा निरंतर होती जाए भक्ति पुष्ट होती जाए धीरे 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 बढ़ते बढ़ते निष्ठा आएगी खंड खंड यदि मेरा प्राण हो जाए तभी भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा संसार में प्रलय हो जाए सारा विश्व एक तरफ मैं एक तरफ कोई परवाह नहीं ऐसा आदमी दृढ़ भजन कर सकता है और उसके लिए कृष्ण सब प्रकार की सुविधाएं कर देंगे पांडवों जैसा बड़ा राज्य भी दे सकते हैं पांडवों में पांडवों की स्त्री जो द्रौपदी थी कितनी सुंदरी थी उस समय में विश्व में सबसे सुंदरी थी और उनका कितना बड़ा भारी राज्य उनके पुत्र कैसे ये वैभव भी दे सकते हैं इस प्रकार से निष्ठा रुचि आए अभी हम आते हैं खूब उत्साह है हम चले जाएंगे फिर संसार अभी डूब जाते हैं क्या करूं ना करूं हरि नाम में रुचि भी नहीं जब जाते हैं जहां जाते हैं बड़ा उत्साह सब लोग सुनते हैं बड़े चलते कूदते हैं कीर्तन भी बहुत साथ से अभी कितना आनंद हो रहा है जब चले जाएंगे तो लोग मुरझा जाएंगे ऐसा नहीं रुचि हो भजन में गुरु जी ये दे देता है रुचि उस समय में चिंतन और बढ़ जाएगी हाँ हाँ कृष्ण कहाँ है हाँ कृष्ण कहाँ गुरुदेव कहाँ ये तिरह उसमें आएगी रुचि से फिर आ जाएगी आसक्ति बिना उसे रहा नहीं जाएगा इस तरह से आसक्ति से अपने आप वो जो भक्ति है हमारे अंदर में अभी तक भक्ति का आभास है भक्ति नहीं है उसमें क्या होगा नयनं गलदाश्रु धारयन् आंखों में आंसू निरंतर बह रहे कोई पूछेंगे और 10 गुना और बढ़ता जाएगा सदा द्रवित होता रहेगा एक हिरण को देखा ये कृष्ण का हिरण है किसी मोर को देखा एक मोर पंख देखा मूर्छित होकर के घूम गए किसी सुंदर स्त्री को देखा ये हमारी राधा जी की सहेली है एक सुंदर देखा ये तो श्रीराम सुबल है उसको स्फूर्ति होगी कृष्ण की संसार का कोई भी अच्छा सुंदर चीज देखेंगे उसकी स्फूर्ति कहां जाएगी सब कितना सौंदर्य देखा सब महाप्रभु जी ने देखा एक बहुत ऊंचा बालू का टीला अरे ये तो गिरिराज गोवर्धन है उन्होंने समुद्र देखा, अरे ये तो यमुना जी लहरा रहे, उसमें कूद पड़े। जब इस समय में ये भाव उत्पन्न होगा, ऐसे भाव ये सबको उद्देश्य रख करके जीव का निर्वाह के लिए कृष्ण तुम्हारे लिए करेंगे। अनन्य चिंतन तो मांगे जना पद्यपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम महाम। जब उसको सुध नहीं रहेगी तो कृष्ण दौड़े आएंगे, इसका जीवन निर्वाह कैसा होगा, कृष्ण उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। ऐसा भाव, ये सब भजन के तरीके हैं। ऐसा भजन आप कीजिए, जीवन में सुखी रहिए और क्रमशः धीरे धीरे परिपक्व होकर के इस प्रेमा भक्ति ब्रज भक्ति की तरफ में आप सेवा दूसरा। आज रात भी हो गई, मैं सोचा था जी आराम करूंगा तारमण से, यही आराम है भगवान की कथाएं। आप लोगों ने हमको कृष्ण की कुछ कथाएं स्मरण करा दी। आप लोग इसको सुंदर से भजन कीजिए, संसार का कर्तव्य पालन कीजिए, उसमें मुंह में मत फंसिए। इस तरह भगवान आप लोगों का कल्याण कर, आप लोगों को राधा कृष्ण की ब्रज की प्रेमयी भक्ति, इसे बढ़कर के कुछ नहीं। आप एक सुनाइए, इसके बाद में बंद करें, आरती के लिए तैयारी करके रखें।
Thank you. Thank you.